ओम शांति। बाबा तो दिलाराम है, सबके दिल को आराम देने वाला, पर दिल को ठीक रखने वाले भी आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, जिनका हम करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी 17 वर्षों से 1995 से माउंट आबू शांतिवन ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हृदय रोग विशेषज्ञ एवं सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आप MBBS MD के साथ साथ आप HCCP FIAE और FIMSA में फेलोशिप अवार्डेड हैं। आप हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। आप नेशनल अथॉरिटी काउंसिल के साथ विभिन्न मेडिकल एवं आध्यात्मिक क्षेत्र के लाइफ मेंबर हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस MD व PhD के गाइड के रूप में भी सेवाएं देते हैं। आपकी अथक सेवा को देखते हुए आपको विभिन्न अवार्ड से नवाजा गया, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2006 में इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन मेडिसिन फॉर फर्स्ट सेंचुरी अवार्ड आदि आदि। आपने भारत के विभिन्न स्थानों पर सोल बॉडी माइंड मेडिसिन, हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, साइंस ऑफ योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आदि आदि टॉपिक्स पर सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस आप सेवाएं देते रहते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी आपकी सेवाएं चलती हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप ज्वालामुखी योग द्वारा पुराने संस्कारों को कैसे भस्म करें इसकी विधि आप सभी को सुनाएंगे।
ओम शांति। हम सभी चाहते हैं और हमारे मीठे बाबा की भी हमसे यही शुभाश है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी समान और संपूर्ण बन जाएं। तो उसमें जो बाधा पड़ती है या विघ्न पड़ता है वो किससे पड़ता है? पुराने संस्कारों से। तो पुराने संस्कार क्या हैं? बेसिकली संस्कार माने आदत, हैबिट। संस्कार माने आदत है। और ये आदतें, कौन सी आदतें, कौन सी हैबिट्स? विकारों के वश किए हुए कर्म। पांच विकारों के वश किए हुए कर्म ही हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जैसे हमें उनकी आदत पड़ गई है। जैसे काम विकार के वश कोई किया हुआ कर्म हो, क्रोध के वश किया हुआ कोई कर्म है किसी के साथ, कोई हमें क्रोध से बोल बोला है हमने किसी के साथ, लोभ के वश किया हुआ कर्म है, मोह के वश किया हुआ कर्म है, या बोल या कर्म, दोनों कर्म क्या कहलाते हैं? कर्म कर्म खाली हम बोलने का, हाथों से कर्म करना नहीं, कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम करते हैं, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, और किसी को छूना भी कर्म है। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं उसे कर्म कहलाते हैं। और संस्कार क्या है? हमारी हैबिट्स हैं। और जो भी हमने, जब से हम पैदा हुए, जो भी हमने सोचा, जो भी हमने देखा है, सुना है, बोला है, खाया है, हाथों से किया है या पैरों से किया है, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गया है। कुछ चीजें तो हम पिछले जन्म से लेके आए थे, 63 जन्मों के, कहते हैं 63 जन्म पिछले 2500 साल से जब से हमने जन्म लेना शुरू किया, तब से हम विकारों के वश था, तब से हमारे अंदर देहाभिमान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आई, और तब से जो हम कर्म करते आए हैं, आत्मा वो जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ मन बुद्धि संस्कार तीनों चीजें साथ ले लेती है। जैसे जब आप शांतिवन में आते हैं तो अपने साथ एक बैग लेकर के आते हैं, उस बैग में आपके कपड़े भी होते हैं, आपके ब्रश, टूथब्रश, अपना शेविंग का सामान या जो भी चीजें होती हैं आपके साथ होती हैं। जब आप यहां आते हैं, कमरा मिल जाता है, तो तो अपनी अलमीरा में आप कपड़े रख देते हैं, बाथरूम में ब्रश रख देते हैं, टूथब्रश रख देते हैं, टूथपेस्ट रख देते हैं, शेविंग का सामान रख देते हैं, और जब यहाँ दादी से मिलने जाते दादी को कुछ देते हैं, दादी से कुछ लेते हैं, कुछ यहाँ खाते हैं, कुछ लोगों से व्यवहार करते हैं, और जाने वाले दिन क्या करते हैं? सब कुछ जो यहां से मिला और जो कुछ यहां से खरीदा, सामने की दुकानों से खरीदा, और मन में भी जो इकट्ठा किया बाबा से, जो हमने मुरली सुनी, जो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको यहां मिली, भाई बहनों से आप मिले, वो सब कुछ जो आपको आया वो सब साथ ले जाते हैं, नहीं ऐसा? तो ऐसे ही जब आत्मा गर्भ में आती है, जब यहां से जाती है तो यहां से इस जन्म का सब कुछ ले जाती है, और जब गर्भ में आती है तो पिछले जन्म का जो जब शरीर छोड़ के जाएगी तो यहां से सब कुछ ले जाएगी। डेड बॉडी में ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार है, तीनों चीजें निकाल करके ले जाती है। संस्कार में ना जो अंदर रिकॉर्डिंग है वो सब निकाल करके ले जाती है, समेट के ले जाती है, और फिर दूसरे शरीर में जाती है, पांचवें महीने गर्भ में प्रवेश करती है, तो वो संस्कार, वो मन, वो बुद्धि साथ लेकर के जाती है, और वहां डाल करके उससे हमारे जीन्स बनते हैं। माने इस जन्म का मैंने संस्कार, जो मुझे संस्कार थे वो मैं छोड़े, यहां से लेकर गई, तो आत्मा पांचवें महीने गर्भ में गई और वहां जाकर के उससे फिर जीन्स का निर्माण होता है, और वो आत्मा फिर उसी तरह से व्यवहार करती है जन्म से ही। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो संस्कार दिखाई देने लगते हैं, और कुछ संस्कार उसको बचपन से माता पिता से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो संस्कार विकारों के वश काम, माता पिता भी विकारों के वश काम करते हैं, टीचर भी विकारों के वश काम करते हैं, भाई बहन भी विकारों के वश काम करते हैं, दोस्त भी विकारों के वश काम करते हैं, और वो हम फिर वो संस्कार ऐसे धारण करते जाते हैं, और इस तरह से हमारे वो संस्कार हमारे परमानेंट हो जाते हैं और वो अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो अभी हमारे अंदर 63 जन्मों के संस्कार रिकॉर्ड है, इस जन्म के तो है ही, 63 जन्मों के संस्कार रिकॉर्डेड है यहाँ पर सब। अब वो हमें भस्म करने हैं। संस्कार क्या करते हैं, पाप कर्म क्या करते हैं, क्योंकि जो भी हमने किया हुआ है, जो भी हमने पिछले 63 जन्मों में किया हुआ है, वो सबके सब हमारे रिश्तेदारों के रूप में हमारे साथ में है, हमारे दोस्तों के रूप में हमारे साथ है, हमारे भाई बहनों के साथ रूप में हमारे साथ है, हमारे पड़ोसियों के रूप में हमारे साथ है। हर आदमी के साथ लगभग 100 लोग तो होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा? कम से कम 100 लोगों का संबंध तो उसका होता है, संबंध संपर्क हर एक का होता है। वो 100 लोग ही उसके साथ पिछले जन्मों में सबके साथ रहे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने विकारों के वश कर्म किए हुए हैं, और वो सब फाइल्स यहां पर रिकॉर्डेड है। जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो फाइल खुल जाती है। जैसे किसी व्यक्ति से आपने 20 साल पहले गुस्सा किया हो, या उसने आपके साथ गुस्सा किया हो, या मिसबिहेव या धोखा दिया हो, आपको 20 साल याद नहीं आएगी, वो वापस 20 साल के बाद जब आएगा आपके सामने तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, और फिर वैसा ही कर्म आप दोबारा कर देंगे। जैसे पति पत्नी भी होते हैं ना, घर में सभी पति पत्नी अनुभवी है ना, यहाँ पे तो कुछ बैठे हुए हैं, तो सभी जानते हैं कि सभी के आपस में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके आपस में झगड़ा ना होता हो, झगड़ा होता नहीं होता, और लगभग रोज भी हो जाता है कभी कभी तो ना, कोई ना कोई बात पे अनबन, क्योंकि दो अलग अलग संस्कार की आत्माएं होती है ना। तो जब पत्नी पीछे से सोचती है, जब पति काम पे चला जाता है तो सोचती है मैं आज शाम को मेरा पति घर में आएंगे ना, तो मैं उनसे बहुत प्यार से बात करूंगा, क्योंकि कुछ चीज भी बना के रखती है, कुछ ना कुछ स्पेशल जो उनको अच्छा लगता है। पति भी ऑफिस में सोचता है मैं आज जाके बहुत प्यार से अपनी पत्नी से व्यवहार करूंगा, क्योंकि जब फिर एक आमने सामने आते हैं शाम को, फिर क्या होता है, फिर वही बातें याद आ जाती है ना, देख के इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, फिर वो ही हम वैसा ही फिर दोबारा कर देते हैं। तो ये है पाप कर्म, मतलब जो पाप कर्म आपने रिकॉर्ड किया, जो आपने किया वो मिटा नहीं, वो अंदर फिर दोबारा आपसे वही पाप कर्म करा देता, वही क्रोध के बोल, वही खराब वाले बोल, वही ऐसे कर्म वो हमसे दोबारा हो जाते हैं। तो ये यही संस्कार है, और जिसको हम अपना कह देते हैं, निजी कह देते हैं, निजी संस्कार कह रहे बाबा इसको, निजी संस्कार, संस्कार भी निजी, हमारे निजी नहीं है, हमने खुद बनाए हैं, और हमको इस शरीर में रहकर ही भस्म करने हैं। और ज्वाला जो है, जैसे ज्वाला क्या करती है, ज्वालामुखी जब बाबा ज्वालामुखी याद का बाबा काफी सारी मुरलियों में इस साल हमें हर बार लास्ट की मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेले ज्वालामुखी याद होनी चाहिए, ज्वालामुखी मतलब लाइट माइट स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली याद होनी चाहिए। ज्वाला क्या करती है, आग क्या करती है, आग रंग और रूप का परिवर्तन कर देती है। आप लकड़ी को जलाओ तो क्या बन जाता है, कोला बन गया ना, रंग भी बदल गया रूप भी बदल गया। और कोयला जलाओ तो क्या बन जाएगा, राख बन जाती है। तो ऐसे ही आज मेरे अंदर कोई स्वभाव मेरा है, मेरा कोई संस्कार है पुराना, मुझे किसी व्यक्ति को देख के गुस्सा आता है, कोई चीज देख के मुझे लोभ आता है, कोई चीज देख के किसी के प्रति मोह लगाव पैदा होता है, किसी बात का मुझे अहंकार है, किंतु ज्वालामुखी याद से वो आज मैंने अगर ज्वालामुखी याद की है तो कल वो संस्कार नहीं रहेगा, उसे कहेंगे ज्वालामुखी याद। अगर आज भी मैं कल भी मेरे अंदर, आज सुबह मैंने अमृत वेले योग किया, कल मैंने ऐसा व्यवहार किया था, किंतु आज भी मैंने व्यवहार ऐसा किया तो इसका मतलब मैंने ज्वालामुखी याद नहीं थी, क्योंकि रंग रूप परिवर्तन हुआ ही नहीं। कल भी मैंने ऐसा किया, आज भी ऐसा किया। तो चलिए अब हम सभी अभी बहुत ही गहराई से अगले 45 मिनट के लिए अपने, मैं समझता हूं अब इस टॉपिक को हम बहुत गहराई से अब डिस्कस करेंगे। अगले 45 मिनट के लिए अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ताकि ध्यान आपका इधर उधर ना जाए, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें सिर्फ अगले 45 मिनट के लिए ना। जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद हम किसी को फोन नहीं कर सकते हैं। हाँ ये तो मुझे याद ही नहीं। अच्छा आज तो थर्ड संडे है, तो ऐसा करते हैं 7:30 बजे फिर हम ना अभी हम ज्वालामुखी याद का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं था कि थर्ड संडे है आज, तो अभी मुझे बताया कि थर्ड संडे है, तो मैं आपको सिर्फ ज्वालामुखी याद के इस अभ्यास में अभी टिक जाएंगे और इसी में एक ही संकल्प लेके बैठेंगे, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, मैं एक चमकता सितारा हूं, 7 गुणों का स्वरूप हूं, 7 गुण मुझ आत्मा से मुझे मेरे शरीर में जा रहे हैं और परमात्मा 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद और शक्तियों का सागर है। और तीव्र पुरुषार्थी का मतलब ही क्या है, तीव्र पुरुषार्थी का मतलब है पास्ट को बिंदी लगाए, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना और सबको बिन्नी देखना, और फरिश्ता माना सातों एनर्जी से भरपूर, सातों गुणों से भरपूर। जब हम बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करते 7 गुण हमारे अंदर भर जाते हैं और वही फरिश्ता स्थिति है। तो हम सभी अभी बहुत ही पावरफुल याद में बैठेंगे, इसी स्थिति में बैठेंगे, 7 गुणों से अपने आप को भरपूर कर लेंगे। हमारी जब 7 एनर्जी बॉडी में भर जाती है तो हम एकदम लाइट माइट स्वरूप हो जाते हैं, लाइट माइट से भर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन को एकाग्र करके अगले लगभग 40 मिनट के लिए हम ऐसा पावरफुल याद करेंगे। चलिए सभी सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट होके बैठें और फिर 7:30 बजे हम आपसे ज्वालामुखी याद द्वारा विक्रम विनाश करने पर बात करेंगे। तो ज्वालामुखी याद द्वारा पुराने संस्कार का को भस्म करना, वो कैसे हम करें? ज्वालामुखी याद तभी हो सकती है जब हम सबके दिल में बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार है। बाबा ने कहा सभी बच्चे प्यार में पास हैं, कि तो ये जो प्यार है, दिल का प्यार है, वो जब हमारे वो अग्नि का रूप धारण कर ले तो ही वो ज्वालामुखी याद बन सकती है। और एक ही संकल्प टिक जाए, एक संकल्प में टिक जाए तो वो ज्वाला का रूप धारण कर सकती है। तो इसके लिए हमें चार गेट हैं, वो चार गेट पहले बंद करने होंगे। अगर हमें ज्वालामुखी याद जिन चार गेट से माया आ जाती है, जिससे हमारे विचार संकल्प एक से बहुत अधिक हो जाते हैं और हम एक संकल्प पे टिक नहीं सकते हैं, वो चार गेट कौन से हैं? पहले चार गेट और पांच निशानियां हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, और फिर सात बल हैं, है ना? चार गेट हैं, पांच निशानियां और सात बल, और फिर एक योग की बिल्डिंग हम तैयार करें उसके अंदर ज्वालामुखी याद बन सकती है और तब हमारी पुराने संस्कार विनाश हो सकते हैं। ये प्रोसेस है, एक विधि है, जिस विधि के अंदर हमको टिकना होगा। तो पहले चार गेट कौन से हैं? अगर वो चार गेट हमने खुले छोड़ दिए तो हमारी हम कितना मर्जी अभ्यास करें वो ज्वालामुखी याद हो ही नहीं सकती है। तो पहला गेट है देह, अपने को देह समझना। तो अपने को जो देह समझते हैं हम, इस देह को इसका गेट बंद कर दें सदा के लिए, कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। इसके लिए बहुत सच्चे गहराई से सच्चे दिल की अनुभूति चाहिए, सच्ची महसूसता चाहिए, सच्चे दिल की महसूसता की शक्ति चाहिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। इसके लिए अपने आप से बातें करते रहें, गहराई से महसूस करते रहें। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं शरीर से तो शरीर किस काम का रहेगा? मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा ही हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा ही सांस ले रही हूं फेफड़ों के द्वारा, मैं आत्मा ही आंखों से देखती हूं, मैं आत्मा ही सुनती हूं, मैं आत्मा ही बोलती हूं, ये सारा काम मैं आत्मा ही कर रही हूं, यहां बैठ के कर रही हूं। तो बार बार जितना इसका चिंतन करते जाएंगे, जितना चिंतन करते जाएंगे, गहराई से अनुभव करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, उतना ही इस संकल्प में दृढ़ता आती जाएगी कि मैं आत्मा हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, मैं देह नहीं, एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये है पहला गेट, देह, अपने को देह समझना। दूसरा गेट है देह के संबंध, देह के संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, है ना, और बहुत सारे संबंध हैं। जितने भी देह के, जब मैं आत्मा हूं तो ये संबंध सब यहीं रह जाने वाले हैं। मेरे सर्व संबंध एक परमात्मा बाप के साथ है। तो जितने भी संबंध लौकिक संबंध होते हैं ये सब मुझसे लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। आप अपने आप को देख लीजिए, आपके जो भी रिश्ते हैं वो सबके सब रिश्तों को आपको शांति से चलाना पड़ता है। सामने वाले आपका सहन करने का, कुछ बातें कहेंगे आपको सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, समाना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, परखना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करना पड़ता है, समेटना पड़ता है, हर एक को शांति देनी पड़ती है, प्यार देना पड़ता है, सुख देना पड़ता है। आप भले 30 साल से सुख दे रहे हो किंतु आज आपने नहीं दिया तो लोग कहेंगे आपने हमारे लिए, अपने बच्चों को देख लीजिए, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, सब ऑफिस में भी सब कुछ कर रहे हैं, आज आप बहुत सालों से कर रहे हैं किंतु आज आपने नहीं किया तो क्या कहेंगे बच्चे, या आपके जहां भी आप काम करते हैं आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। तो ये जो संबंध है, संबंध हमारे परमात्मा के साथ हैं, जो लौकिक संबंध है उनके प्रति हमारी फर्ज है, कर्तव्य है, वो हमारा कर्तव्य हमें निभाना है, ड्यूटी है, वो हमारा अकाउंट है। कोई मेरी पत्नी क्यों बनी, या मेरा पति क्यों बना, या मेरा बच्चा क्यों बना, या मेरे बाप क्यों बने, या मेरा दोस्त क्यों बना, वो अकाउंट क्लियर करने के लिए बने, वो मुझे परमात्मा से हर संबंध की अनुभूति, मां की अनुभूति, बाप की अनुभूति, टीचर की अनुभूति, सतगुरु की अनुभूति, बंधु मना भाई की अनुभूति, दोस्त की अनुभूति, साजन की अनुभूति और सज्जन की अनुभूति, और बच्चे की अनुभूति भी उससे कर सकते हैं। एक एक संबंध की गहराई में जाएं, अगर एक एक संबंध के ऊपर क्लास कराई जाए तो आधा आधा घंटा तो उसी में क्लास तो छोड़िए, एक एक अनुभूति में आधा आधा घंटा टिक सकते हैं। मां की अनुभूति में बैठ जाओ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाप दादा के रूप में, ब्रह्मा के रूप में वो मेरी मां है, मैं उनकी गोद में हूं, मुझे क्या दे रहे हैं, क्या उनसे प्राप्ति है, बाप के रूप में क्या अनुभूति है। तो जितना जितना अनुभूति में टिकते जाएंगे वो माया का गेट बंद होता जाएगा, देह के संबंधों का गेट बंद होता जाएगा, उनके प्रति ये रहेगा मेरा फर्ज है, ये फर्ज मुझे अच्छे से करना। और जितना हम बाप के साथ आठों संबंध निभाएंगे उतना अधिक हम अपने जो लौकिक कर्तव्य हैं वो अच्छे से निभा सकेंगे। नहीं तो लौकिक संबंध निभाने में हम जब विकारों में चले जाते हैं, किसी से क्रोध कर लेते हैं, लोभवश व्यवहार कर लेते हैं, क्रोधवश कर लेते हैं, मोहवश कर लेते हैं, अहंकार वश करते हैं, तो संबंध और ही खराब हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो या युगल हो या माँ बाप हो या दोस्त हो, संबंध बाकी टूट जाते हैं, सो कॉल्ड संबंध टूट जाते हैं। तीसरा गेट है माया का, देह के स्वभाव और संस्कार। देह के स्वभाव क्या है? देह के स्वभाव पांच स्वभाव है, देह के काम विकार देह का स्वभाव है, क्रोध देह का स्वभाव है, अपने को देह समझेंगे दूसरे को देह समझेंगे क्रोध आएगा ही आएगा, लोभ आएगा ही, मोह आएगा ही, अहंकार आएगा, ये देह के स्वभाव हैं। और देह का संस्कार क्या है? देह का संस्कार ही आलस्य है, अपने को देह समझेंगे ना, आज आपको नींद हमने कम की, थोड़ा सो लेते हैं, आधा घंटा सो लेते हैं, एक घंटा सो लेते हैं, देह का संस्कार ही अलबेलापन है, देह का संस्कार ही दूसरे में दोष निकालने की आदत है, मैंने अच्छा काम करता हूं ये ठीक काम नहीं करते, ये काम इन्होंने ठीक नहीं किया, देह का संस्कार ही संस्कार माना आदत, देह का संस्कार ही बदलने की भावना है, और देह का संस्कार ही शक करना है, देह का संस्कार ही अनुमान लगाना है, देह का संस्कार ही चिंता करना है, अपने को देह समझेंगे चिंता आएगी, दूसरे को देह समझेंगे चिंता आएगी, और देह का संस्कार ही भय है, देह का संस्कार ही प्रेशर फील करना है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम इस ढंग से होना चाहिए जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, इसी कारण जल्दीबाजी पैदा होती है देह के कारण ही, और देह का संस्कार ही ईर्ष्या है। और जब मैं आत्मा हूं, जब मैं नक्की कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के सात स्वभाव कौन से हैं आप सभी जानते हैं, कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, आठ शक्तियां। और देह का और आत्मा का संस्कार क्या है? आत्मा का संस्कार आलस्य नहीं है, आत्मा का संस्कार है अलर्टनेस, अलर्ट, चुस्त, चुस्ती, एक्टिविटी, मतलब एक्टिव। और आत्मा का संस्कार है एक्यूरेसी, समय पर हर कार्य करना, और अपनी दिनचर्या में जो परमात्मा बाप ने, हमारे मीठे बाबा ने अमृत वेले से रात तक जो संकल्प की दिनचर्या दी है, बोल की दिनचर्या दी है, हर कर्म की दिनचर्या दी है, संबंध संपर्क में आने की दिनचर्या दी है, उसमें एक्यूरेट रहना, यह है आत्मा का संस्कार। तो अलर्टनेस, एक्यूरेसी, और दोष निकालना नहीं, गुण ग्रही, सबके गुण देखना, गुण देखना और गुण ग्रहण करना, बदलने की भावना नहीं, सब पे रहम करना, किसने कुछ कर दिया, गलत कर दिया हमारे प्रति, रहम करना, कोई बात नहीं, उसने क्रोध के वश ऐसा किया, किसी विकार के वश में से बदला लिए, कुछ गलत किया मेरे साथ, उस पर रहम करना, ना कि उससे बदला लेना। आत्मा का संस्कार क्या है? शक करना नहीं, निश्चय और विश्वास, निश्चय और विश्वास, निश्चय मेरा बाबा है, ये भी आत्मा है, ये भी मेरे परिवार का है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरा भाई है, वो विश्वास नहीं, अगर कुछ गलत हुआ भी है, सो कॉल्ड गलत हुआ है, वो मेरे कर्मों का अकाउंट था, क्लियर हो गया। और आत्मा का संस्कार क्या है? चिंता करना नहीं, बेफिक्र, बेफिक्र निश्चिंत, निश्चिंत स्थिति। ड्रामा बना बनाया है, सब एक्यूरेट होगा, बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, सब एक्यूरेट होगा, निश्चय, सॉरी निश्चिंतता और भय नहीं, निर्भयता। यह आत्मा का संस्कार है। आत्मा का संस्कार जल्दी नहीं, धैर्यता, प्रेशर नहीं, धैर्यता, हर बात में धैर्यता। आत्मा का संस्कार ईर्ष्या नहीं किसी से, सबके प्रति कल्याण की भावना, विश्व कल्याणकारी। तो यह आत्मा का संस्कार है। और आत्मा के देह के पदार्थ क्या है? हमारा जो मकान है, कार है, पैसा है, ये आत्मा, ये देह के पदार्थ है। इसका गेट बंद कर दो। कैसे बंद करेंगे? किंतु कब बंद होगा? जब जो दैवी गुण है ना, आत्मा के जो प्रॉपर्टी है ना, पदार्थ है, वो दैवी गुण है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता माना एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। मेरी आंख में हमेशा ही, मेरी बुद्धि हमेशा शांति धाम में रहती है, सुख धाम में रहती है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एक सेकंड में सुख धाम चले गए, एक सेकंड में परम धाम चले गए। तो यहां तो दुनिया में डर लगेगा नहीं, मैं आत्मा हूं, तभी पॉसिबल है। निर्भयता, अंतर्मुखता, एक एक नामी, एक व्रता, एकाग्रता, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति। और जिसके पास ये पांच चीजें होती हैं, ये तपस्वी की निशानी है, पांच चीजें। तपस्वी वो जिसके मन में एक के अलावा दूसरा कोई ना हो। दो वाला तपस्वी नहीं कहलाता है। कि तपस्वी वो जो एक व्रता हो, तपस्वी वो जिसका मन और बुद्धि एकाग्र हो, अपने लक्ष्य में एकाग्र हो। मेरा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, बाप जैसा बनना, संपूर्ण बनना, और लक्ष्मी नारायण मेरा एम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस जैसे गुण धारण करना। और वैध से इकोनॉमी, तो जहां जहां मेरी एनर्जी व्यर्थ हो जा रही है, चेक कर लें कि कहां मेरी एनर्जी लीकेज तो नहीं है, मेरे मन और बुद्धि में कहीं लीकेज तो नहीं है। किसी के प्रति तीन जगह लीकेज होती है, लगाव, झुकाव और टकराव। मन में किसी के प्रति लगाव है, किसी के प्रति थोड़ा झुकाव है, वो अच्छा लगता है, टकराव है किसी से, अगर तीन छेक हैं मन और बुद्धि में, तो सारी एनर्जी लीक होती, कितना मर्जी योग लगाते रहो, सारी एनर्जी लीक होती रहती है, पावरफुल याद नहीं हो सकती, ज्वाला याद नहीं हो सकती, ज्वालामुखी याद नहीं हो सकती। फिर है, जब हमारी लीकेज खत्म होती तो एक रस स्थिति होती है, और एक रस स्थिति होने के बाद हम एकांत प्रिय हो जाते हैं। एकांत प्रिय होने में क्या होता है? हमें एक के अंत में खोए रहते हैं। एकांत माना एक के अंत में खोए रहना। ज्ञान सागर बाप के अंत में खो गए, परम धाम में चले गए, 15 मिनट पता ही नहीं हम कहां हैं, बाबा की याद में से परम धाम में है, बस बाबा और मैं, चमकता हुआ सितारा वो, मैं चमकता हुआ सितारा वो, सातों गुणों का सागर, मैं सात गुणों का स्वरूप, जितना वो चमक रहा है उतना ही मैं भी चमक रहा हूं, ऐसे जैसे मेरी चमक बढ़ती जा रही है, ऐसा फील, ऐसा अनुभव होता रहे 15-20 मिनट। ये एकांत प्रिय, एक के अंत में खोए रहो, और इस एकांत में ही आठों संबंधों की अनुभूति हो सकती है। मां के साथ मां का अनुभव, बाप का अनुभव, एक एक संबंध की अनुभूति में खोए रह सकते हैं। तो पहली पांच बातें होंगी तभी है वो स्थिति हो सकती है। कौन कौन सी पांच बातें? एक नामी, एक व्रता, एकाग्रता, व्यर्थ से इकोनॉमी, तीन बातों से स्पेशली लीकेज चेक करनी होती है, लगाव, झुकाव, टकराव, और फिर एक रस स्थिति, और उसके बाद एकांत प्रिय, सॉलिट्यूड, लवर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत में खोए हुए हैं। भले हम काम कर रहे थे भाई, अपने जहां भी काम कर रहे हैं वहां भी एकांत में ही खोए हुए हैं, उसी एकांत में खोए खोए काम कर रहे हैं। फिर सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी और चार गुण सपूत बच्चों के जिन पे बाप सदा सुख सदा खुश रहता है। आज्ञाकारी, आज्ञा क्या है बाबा की? पहली आज्ञा पवित्र भव योगी भव। ये दैवी गुणों की बात मैं कर रहा हूं। ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ईमानदार, वफादार, पहले आज्ञाकारी फिर वफादार। वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके अंदर आज्ञाकारी हो, जो वफादार है, वो दिल सच्ची दिल है। ईमानदार माना तन मन धन सब तेरा माना रोम रोम में बाबा समाया हो, बाबा की याद समाई हो, मुरली समाई हो, मेरे एक एक सेल में, बॉडी के एक एक सेल है ना, जो बॉडी के एक, उसमें रोम रोम बज, रोम मुरली माना बजती, बजनी चाहिए अंदर। सुबह जो मुरली सुनी, बजनी चाहिए अंदर, अपने आप ऑटोमेटिक याद आनी चाहिए, अपने आप बजते रहना चाहिए। रेवरबरेट कहते ना, जैसे होती ना, जो गुंबज में होती ना प्रतिध्वनि, इको पैदा होती है अंदर से प्रतिध्वनि। ये भी गुंबज है ना हमारा शरीर, ये गुंबज जैसे हमारा, कैसे गुंबज जैसे है ना, तो गुंबज में बजते रहना चाहिए, बार बार इको होना चाहिए। तो वो स्थिति हमारी हो, तो ईमानदार माना तन एक एक रोम बाबा बाबा करे बस। मन माना चार बातें, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। स्मृति में एबीसीडी हो, एबीसीडी माना ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, डी फॉर ड्रामा। संसार एक ड्रामा है, इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा है। तो यही स्मृति में एबीसीडी पक्की भरी हो। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो। भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी हो। धन, सबसे बड़ा धन कौन सा है हमारा? समय। हर सेकंड बाबा की याद में जाए, हर सेकंड बाबा के कहे हुए महावाक्यों को स्मरण करता रहे, मंथन करता रहे, और मनन करते करते मगन हो जाए उस स्थिति में, तो वो हर सेकंड इसमें बीते। हर संकल्प बाबा की याद वाला हो, हर बोल जो बाबा ने कहा वो हम रिवाइज करें। जैसे बाबा ने कहा ना, आज ब्राह्मण कम रिवाइज करते हैं, गोपियां ज्यादा रिवाइज करती हैं, तो वो रिवाइज ऑटोमेटिक रिवाइज होते रहे। आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने कहा दो बात बताई, प्योरिटी और मुरली, है ना, तो वो बार बार होना चाहिए। प्योरिटी क्या है, क्या कितनी शुद्धता होनी चाहिए। तो ऐसे ये है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की याद में हो। वो कहते हैं हाथ काटे दिल याडे, तो वो स्थिति हर समय चलती रहे। और ये है ईमानदारी। स्थूल धन भी बाबा की श्रीमत पे खर्च करना, संबंध भी बाबा की श्रीमत पे निभाना, संपर्क में भी बाबा की श्रीमत पे आना, मर्यादा तोड़ के नहीं आना। और फिर है लास्ट है फरमान बरदार। फरमान बरदार बाबा का फरमान क्या है? बाबा का फरमान है देहे, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ, मां में कब याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। और तब जब विक्रम विनाश होंगे तो तुम पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। और हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो फिर बाप समान मिल, हम बन करके बाप से मिलन बना सकेंगे। तो ये चार बातें, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार जो बनता है वो बाबा का सपूत बच्चा कहलाता है। और ऐसे सपूत पर बाबा अपना पूरा वर्षा दे देता है ऐसे बच्चे। तो ये जो हमारी जब चार गेट बंद हो गए ना, जैसे अपने आप से बात करते करते चारों गेटें माया के बंद हो गए, तो चार गेट बंद होने के बाद ऑटोमेटिक हमारे अंदर पांच निशानियां आ जाती हैं, जो मैंने बताई ऑलरेडी, तपस्वी की पांच निशानियां। एक नामी, क्योंकि पक्का हो गया मैं आत्मा हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, है ना, और संबंध मेरे सुख साथ हैं। और फिर जो है ऑटोमेटिक हमारे जो है स्वभाव मेरे सात गुण है, संस्कार मेरे जो मैंने बताए संस्कार, वो दस संस्कार बताए आत्मा के वो हैं, और मेरी जो प्रॉपर्टी है आत्मा की वो दैवी गुण है। तो ये जब पक्का हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक नामी हो जाती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वहीं से मिलती है, एक नामी हो जाती है। फिर ऑटोमेटिक हमारी एकवर्ता हो जाते हैं, एकाग्र बुद्धि रहने लगती है, और वैसे इकोनॉमी हो जाती है, और एकरस स्थिति हो जाती है, फिर हम एकांत प्रिय रहने लगते हैं। तो ये जब हमारी प्यास स्थिति हो जाती है, हमें अब तीन बातों का अभ्यास कर, तीन बातें इसके लिए चाहिए अभी हमें। पहली बात हमें चाहिए अभ्यास। अभ्यास क्या चाहिए? चलते फिरते उठते बैठते अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास चाहिए। जितना अधिक हम अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास, मैं आत्मा हूं, उतना सत्यता का बल जमा होता जाए, और जितना हम मैं परमात्मा की संतान हूं, दूसरे को आत्मा देखना, बिंदी देखना, उतना अधिक हम निर्भयता और निश्चिंतता का बल जमा होता जाता है। तो इस तरह से जब हम ये अभ्यास करते जाते हैं, तो ये जो पहले तो हमारे अंदर ज्ञान का बल जमा हो गया, एबीसीडी का चिंतन करते करते, नॉट और डॉट का प्रयोग करते जाओ तो ज्ञान का बल जमा हो गया। जितना अधिक हम सत्यता, इस सत्यता में रहते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, सत्यता का बल जमा हो जाता है। और फिर जो है, जितना अधिक हम ये पांच विकारों का प्रेस करते हैं, जैसे हम हरेक के प्रति कैसी वृत्ति रखें, हरेक को पवित्र दृष्टि से देखना, जब पवित्र दृष्टि से देखते हैं तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाती है, हमारी व्यक्ति, हमारी दृष्टि एकदम पवित्र दृष्टि हो जाती है। और सबसे मधुर बोलना, तो निर्क्रोधी वृत्ति हो गई। तो ये हमारा चरित्र का बल फिर जमा होता जाता है। जितना जितना अधिक हम चरित्र हमारा ऊंचा उठता जाता है, चरित्र का बल, निर्क्रोधी, निर्कामी है ना, निष्कामी और निर्मोही है ना, किसी के प्रति लगाव ना, लगाव वाली दृष्टि ना हो, अनासक्त वृत्ति हो है ना, और निरहंकारी हमारी वृत्ति हो। और फिर उसके बाद हमारे में जब चरित्र का बल जमा हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमारे में दुआओं का बल जमा होने लगता है। दुआओं का बल कैसे जमा होता है? जब हम रिकॉर्ड, किसी चीज का रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर दुआएं मिलती हैं। जैसे कैसा कैसा रिकॉर्ड बनाते हैं? सदा मुस्कुराने का रिकॉर्ड, सदा हाजी करने का रिकॉर्ड, कभी ये अमृत वेला मिस ना करने का रिकॉर्ड, कभी मुरली ना मिस करने का रिकॉर्ड है ना, हमेशा चार्ट भरने का रिकॉर्ड। तो जो जो बच्चे ऐसे, कभी शुद्ध अन्न का रिकॉर्ड, कहीं बाहर खाया नहीं है जब से बाबा के बने हैं, किसी चीज में आसक्ति आकर के वहां से हमने ले नहीं लिया है खाना, तो ये जब रिकॉर्ड बन जाता है, तो बाबा से दुआएं मिलती हैं, परिवार से दुआएं मिलती हैं। और फिर उसके बाद है निश्चय का बल। तो निश्चय का बल कौन सा होता है? जब ये बताया ना, जैसे ये जो परिवार है हमारा है, बाबा हमारा है, इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, ये सब एक्यूरेट हो रहा है। मतलब स्व पे निश्चय, बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, परिवार पे निश्चय। तो जितना अधिक है, जब हमें शक्ति आती जाती है, तो ये बल हमारे निश्चय का बल जमा होता जाता है। फिर पवित्रता का बल। ये जो हमारा इतना बड़ा परिवार चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, कौन चला रहा है? ये पवित्रता के बल से चल रहा है। तो कौन है पवित्र, सदा पवित्र कौन है? कौन है? शिव बाबा, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा। अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पवित्र बन गए ना, और हमारी दादियां। तो यज्ञ जो है कोई पैसे से नहीं चल रहा है, पवित्रता के बल से चल रहा है। और अगर थोड़ी सी भी इंप्योरिटी हमारे अंदर होती है, तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंप्योरिटी क्या है? थोड़ी सी कामना है, थोड़ी सी इच्छा है, नाम मान सम्मान की थोड़ी सी इच्छा, मुझे ये सेवा मैं कर रहा हूं ना, इसे थोड़ा मुझे लोग पूछे तो सही, मैंने इतने पैसा दिया ना, लोग मुझे, टीचर मुझे थोड़ा नाम तो ले दे ना मेरा, थोड़ा सा मेरा नाम तो हो जाए ना। अगर इच्छा थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी कामना है, तो सिद्धि प्राप्त, ये भी अपवित्रता है, तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो सिद्धि प्राप्त तब होगी जब हमारे लिए इच्छा ना हो, क्योंकि बाबा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बांधा हुआ है, इच्छाएं पूरी करने के लिए बांधा नहीं हुआ है। जितनी हमारी आवश्यकता है, बाबा उसको सदा अंत तक पूरा करेगा, किंतु इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कहीं भी किसी तरह का थोड़ा सा दुख फीलिंग है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपवित्रता मेरे अंदर है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म कामना है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छा है, जिसकी वजह से वो भी सूक्ष्म इच्छा भी अपवित्रता है। और सातवां जो है, वो जो बल है, वो श्रेष्ठ कर्मों का बल है, जो बाबा की श्रीमत और मर्यादाओं के अंदर है कि हम कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। तो जितना जितना हम करते रहेंगे हमारा बल इकट्ठा होता जाता है। तो जब सात बल इकट्ठे हो जाते हैं, चार गेट बंद कर दिए, पांच निशानियां आ गई और सात बल इकट्ठे होते जाते हैं, ये एक प्रोसेस में जैसे मारते जाते हैं, योग की बिल्डिंग बनने लगती है। उस बिल्डिंग के अंदर ज्वाला जलती है, क्योंकि आपने देखा ज्वाला के आसपास जोर से हवा चलती रहे तो क्या होगा, माया की हवा तो बहुत तेज चल रही है, ज्वाला जलती है, बुझ जाती है, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो उस योग की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए हमारी? योग की बिल्डिंग में चार चार चीजें होती है ना, एक तो क्या होती है, फाउंडेशन होती है, एक ऊंचाई होती है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, है ना। फाउंडेशन क्या है योग की? योग की फाउंडेशन क्या है, ज्वालामुखी योग की फाउंडेशन क्या है? संकल्प। पहला है शुद्ध संकल्प। देखो बाबा हमारा क्या है, बाबा एवर प्योर है ना, सदा शुद्ध है ना, सदा सबके प्रति शुभ भावना है ना बाबा, कैसा भी बच्चा हो सबके प्रति शुभ भावना बाबा की, सदा 100% शुभ भावना है, 100% प्योर है, 100% शक्तिशाली संकल्प बाबा के हैं, 100% कल्याणकारी संकल्प। ऐसे ही बाबा के बच्चों के संकल्प भी कैसे होने चाहिए, शुद्ध, सदा शुद्ध। सदा शुद्ध माना मैं आत्मा हूं, मैं चमकता सितारा हूं, बस यही शुद्ध संकल्प। परमात्मा के संतान हूं, हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट, होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट, सबसे जिसका कोई बाप नहीं वो मेरा बाप है, जिसका कोई गुरु नहीं वो मेरा गुरु है, जिसका कोई टीचर नहीं वो मेरा टीचर है। इस नशे में इतना शुद्धता, इतनी शुद्धता, किसी की तरफ आंख ना जाए, बीमार भी हो जाए तो डॉक्टर की तरफ ध्यान नहीं जाए, बाबा मेरा डॉक्टर है। फिर बाबा जिसको टच कराए भले उस डॉक्टर के पास जाए, तो अपने मन से ये डॉक्टर के पास जाऊं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, चले चले जाओ, नहीं तो बाबा को बाबा आप ही ठीक करो ना, सिर दर्द है तो आप ही दबा दो ना सिर मेरा, बाबा मालिश कर देता है किरणों से ना। तो इतनी शुद्धता अंदर हो, इतना एकव्रता हो, दूसरे की तरफ बुद्धि जाए नहीं बिल्कुल भी, तो ये शुद्ध संकल्प। फिर शुभ संकल्प, किसी ने मेरे साथ कैसा भी किया हो, किसी ने कोई बुरा नहीं किया है, हिसाब किताब चुकतू किया है, तो शुभ संकल्प, 100% शुभ भावना। सारे विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके प्रति मेरे मन में जरा भी अशुभ आए, 100% शुभ हो, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होना। शुभ शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली संकल्प किसे कहते हैं, जिसमें आठों शक्तियां समाई हो, उस मैं वो संकल्प हूं जिसमें प्रकृतिक शक्ति समाई हो, परख करके पहले सोचो फिर करना, संकल्प भी पहले सोचना है, थिंक बिफोर यू थिंक, दादी जी कहते हैं ना, दादी जानकी जी ने एक पर बहुत रीथिंक, सोचने से पहले भी सोचना है। तो इस तरह से हमें जो शुभ संकल्प हम कैसे हमारे हों, शक्तिशाली माना परखने की शक्ति समाई हो, निर्णय करने की शक्ति समाई हो, जिसमें जो मर्यादा के अंदर वही निर्णय है, बस मर्यादा के बाहर है वो निर्णय मेरा है ही नहीं, उसका वो राइट नहीं है मेरे लिए, रॉन्ग है, उसे नॉट लगा दो और डॉट बन जाओ, है ना, मैं बिंदी हूं, बाबा की याद में टिक गए। तो शक्तिशाली मतलब विस्तार को सार में लाना, समेटना, सहन करना, सामना, समाना, सहयोग, ये आठों शक्तियों से भरपूर संकल्प, वो संकल्प है शक्तिशाली संकल्प। और कल्याण कल्प, फिर लास्ट में कल्याणकारी संकल्प। तो जितना अधिक इस कल्याणकारी संकल्प में टिकते हैं, सारे विश्व के कल्याण के संकल्प, तो ये जो है आठ, ये जो चार तरह के संकल्प है, ये फाउंडेशन है। उतनी हमारी फाउंडेशन, उतनी ऊंची बिल्डिंग हम बना सकते हैं। और फिर ये जो चार तरह के संकल्प हैं, इसमें हम कम से कम कितने घंटे टिके, आठ घंटे, ये है योग की लंबाई, ये तो वही गहराई, मतलब फाउंडेशन, गहराई कह सकते हैं। और फिर योग की लंबाई क्या हो, ये आठ घंटा, मतलब आठ घंटा इस तरह के संकल्पों में टिकना, शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प और कल्याणकारी संकल्प, इन आठ तरह के संकल्पों में टिकना, इनका अभ्यास करते रहना। जैसे मुरली है ना, मुरली क्या है, मुरली ही शुद्ध संकल्प है, मुरली ही शुभ संकल्प है, मुरली में शक्तिशाली संकल्प है, मुरली में कल्याणकारी संकल्प है। तो सारा दिन मुरली बजती रहे अंदर, आठ घंटा कम से कम बजती रहे, उसके सिमरण, उसका मंथन चलता रहे, मनन, चिंतन, मंथन और सिमरण और मगन, उसमें मगन रहे। तो यही हमारी जब ये लंबाई योग की, और फिर आठ संबंधों की अनुभूति, बाबा से आठ संबंधों की, ये हमारी योग की चौड़ाई है, योग की बिल्डिंग की चौड़ाई। कौन कौन संबंध? माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा और साजन। बस बस मंद हमारे जो बाबा से हम पूरा निभाएं, उसके लिए हमें एकांत प्रिय स्थिति होनी चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति में टिकते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति बिल्डिंग बनने लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने लगते हैं लगातार। फिर आत्मिक स्थिति से रहते रहते रूढ़ियान की स्थिति, जब कोई बात होती है बाबा से बात करते हैं, है ना, रूढ़ियान। फिर जैसे करते करते फरिश्ता बनते जाते हैं, जितना जितना ये चार बातें बताई ना मैंने आपको, चार तरह के संकल्प, फाउंडेशन मजबूत हो गई, आठ घंटा किया, आठ संबंध की अनुभूति में रहते हैं, तो बिल्डिंग ऊंची बनती जाती है। आत्मिक स्थिति, रूढ़ियान की स्थिति, बिल्डिंग ऊंची हो गई, फरिश्ता स्थिति और फिर बीज रूप स्थिति। तो इस तरह से हमारी बिल्डिंग तैयार होती जाती है, और जैसे जैसे बिल्डिंग तैयार होती है, बिल्डिंग बन गई, ऊंची बिल्डिंग बन गई, जिसकी ऊंचाई कहां तक है? परम धाम तक। परम धाम तक बिल्डिंग तैयार होने से क्या होता, अब उसमें ज्वाला मतलब सातों एनर्जी बाबा से हमारे अंदर आती जाती है और हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं, जो पुराने संस्कार है कटते चले जाते हैं। ज्यादातर हम बीज रूप स्थिति में रहने लगते हैं, ज्यादातर हम फरिश्ता स्थिति में रहने लगते हैं, क्योंकि बाबा से बहुत गहराई से संबंध की अनुभूति हो रही है। कभी अशुद्ध संकल्प आता ही नहीं तो उस बिल्डिंग में हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये बिल्डिंग क्या है? बेसिकली हमारा ऑरा है, आभा मंडल है, यही हमारा आभा मंडल बन जाता है। तो जैसे जैसे बाबा की याद गहराई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, हमारे संकल्प, हमारे पुराने संस्कार विनाश होते जाते हैं, पुराने विकर्म जो भी किए विनाश होते जाते हैं, और हम बाप समान संपन्न संपूर्ण बनते जाते हैं। इसी को तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं, इसी को फरिश्ता स्थिति कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट कर सकते, ऐसी आत्मा ही सबको संतुष्ट, जो बाबा ने वरदान दिया, तीन वरदान बाबा ने लास्ट टाइम दिए थे, तीव्र पुरुषार्थी भव, फरिश्ता भव और संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करो। तो इस तरह की बिल्डिंग में हम रहेंगे तो क्या होगा, नो ही वरदान के हम अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।